Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke pehle adhyay mein 11वां मंत्र ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि छिड़ै क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विद्याना तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामा ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि छीणहि क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विद्याना तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः छीणहि क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्या विद्याना तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्यं केवल आप्तकामः। इस मंत्र की व्याख्या से पहले संबंध भाष्य देख लो। इदानीं तद्विदस् तद्ध्यायिनश्च तज्ज्ञानात् ध्यानकृतं फलभेदं दर्शयति। अब इस समय इदानीं इस समय या पहले के प्रसंगों के बाद अब नया प्रसंग इदानीं तद्विदः तद्ध्यायिनश्च तत् माने ब्रह्म परमात्मा तद्विदः परमात्मा को जानने वाला तद्विदः और तद्ध्यायिनश्च उस परमात्मा को परमात्मा का ध्यान करने वाला यानी उपासक ज्ञानी और ध्यानी समझ गए ना। तद्विद तद्ध्यायिनश्च का अर्थ होता है उसको जानने वाला और उसका ध्यान करने वाला यानी ज्ञानी और ध्यानी। तज्ज्ञानात् ध्यानाकृतम् ध्यानकृतम् तज्ज्ञान और ध्यानकृतम् ज्ञान के साथ कृत शब्द का प्रयोग नहीं किया इसलिए ज्ञान में क्रिया नहीं ज्ञान क्रियाजन्य नहीं है। यज्ञ क्रियाजन्य है स्वर्ग क्रियाजन्य यज्ञ क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला है और क्रिया शरीर संबंधी है स्थूल शरीर संबंधी है यज्ञ क्रिया। मीमांसक जिस यज्ञ की बात करते हैं वो यज्ञ क्रिया शरीर इंद्रिय से संबंधित है और ब्रह्म ध्यान भी क्रियात्मक है लेकिन वह सूक्ष्म शरीर क्रियाजन्य है। वैदिक यज्ञ स्थूल शरीर और इंद्रियों के साथ संबंध होकर क्रियाजन्य है, क्रिया द्वारा निष्पन्न होने वाला है। और ब्रह्म ध्यान मानसिक क्रिया द्वारा निष्पन्न होने वाला है, ध्यान भी क्रियाजन्य है। लेकिन ज्ञान जो है वह क्रियाजन्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान क्रियाजन्य नहीं है, आत्मज्ञान क्रियाजन्य नहीं है। तो इतना भेद बताने के लिए यहां तज्ज्ञान ध्यान कृतम कहा। तो ज्ञान कृतम ध्यान कृतम यह अन्वय नहीं हो पाएगा, कृतम को दो जगह अन्वय नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ज्ञान कृतम ये शब्द नहीं बनता है वेदांत की दृष्टि से। ज्ञान किसी क्रिया से उत्पन्न वाला होने वाला न होने के कारण ज्ञान कृतम ज्ञान किया ऐसा नहीं होता है। ध्यान मानसिक क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला होने के कारण ध्यान के साथ क्रिया हो गई। यज्ञ स्थूल शरीर के साथ संपन्न होने वाला होने के कारण इस यज्ञ भी यज्ञ कृतम शब्द प्रयोग होगा, यज्ञ कृत्वा इत्यादि यज्ञ करके। इसीलिए भोग भी क्रियाजन्य है, इसलिए भुक्त्वा भोगम तेतम भुक्त है क्रियाजन्य नहीं, वो तो साधन क्रियाजन्य है। साधन क्रियाजन्य है, ज्ञान क्रियाजन्य नहीं है। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान तुम्हारी साधना से जन्म पैदा हुआ हुआ नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वरूप है। ब्रह्म तो तुम्हारा स्वरूप है, कोई किसी कर्म से थोड़ी पैदा होता है। पहले बताया ना नास्ति अकृत कृते, वो तो अकृत है, अकृत होने के कारण क्रिया से वो उपलब्ध नहीं होगा। तो इदानीं तद्विदः तद्ध्यायिनश्च तज्ज्ञान ध्यान कृतम फल भेद। ज्ञान का फल और ध्यान का फल ये अलग अलग होगा। तो ज्ञान का क्या फल होगा, ब्रह्म ज्ञान का फल कैसा होगा क्या होगा, और ब्रह्म ध्यान का फल कैसा होगा और क्या होगा। तो फलभेदम दर्शयति, ये दोनों के फल में जो भेदता है उस भेदता को यहां दिखाया जाएगा। इस ग्यारहवीं श्रुति द्वारा फल भेद को दिखाया जाएगा। श्रुति स्वयं उस बात का व्याख्या करती है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणहि क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तो ज्ञात्वा उस परमात्मा को आत्मत्वेन जानकर, किसको बोले देवं ज्ञात्वा, उस देव को जानकर। देव शब्द का अर्थ वो कोई इंद्र आदि या स्वर्गस्थ देवता आदि या नहीं लेना, देव माने ब्रह्मा परमात्मा, क्योंकि द्योतन होने के कारण वो देव है। द्योतन का अर्थ होता है प्रकाश। ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह स्वतः द्योतन होता है। ज्ञान हमेशा प्रकाश स्वरूप ही होता है, ज्ञान कभी भी अज्ञात नहीं होता, हमने हमेशा ये बात कही है। ज्ञान कभी भी अज्ञात नहीं रहता, ज्ञान हमेशा ज्ञात होता है। इसी तरह एक दूसरी भी विलक्षण बात है, अज्ञान भी अज्ञात नहीं रहती। अज्ञान यानी अविद्या भी अज्ञात नहीं रहती। अज्ञान भी ज्ञात ही होकर रहता है और ज्ञान भी ज्ञात होकर ही रहता है। तुम्हें ज्ञान है और वो ज्ञान का ज्ञान न हो ऐसा संभव नहीं। और तुम्हारे पास अज्ञान हो और उस अज्ञान का ज्ञान न हो तुम्हें, ये भी संभव नहीं है। और कह दिया जाता है अज्ञान का और ज्ञान का और अज्ञान का परस्पर विरोध है, ये कहा तो जाता है लेकिन यहां विरोध नहीं है। अज्ञान है तुम्हारे पास, उस अज्ञान का ज्ञान है कि नहीं? तो अज्ञान कहां है? है उसी अंतःकरण में, उसी बुद्धि में। अज्ञान कहां है? उसी अंतःकरण में यानी उसी बुद्धि में। और ज्ञान कहां है? उस अज्ञान का ज्ञान कहां है? अज्ञान यदि ज्ञात हो गया तो अज्ञान स्वतः नष्ट होना चाहिए ना। तो एक ज्ञान का और अज्ञान का विरोध कहां सिद्ध होगा? विरोध तो हुआ नहीं। यदि विरोध होता तो तुमको यह कहना पड़ता अज्ञान को मैं जानता नहीं हूं, यह कहना पड़ता। अज्ञान को मैं जानता नहीं। लेकिन क्या यह संभव है कि तुम्हारे पास अज्ञान रहे और तुम उसको न जानो? तो ऐसा है, ज्ञान का जो विषय होता है, ज्ञान की यह विशेषता है कि ज्ञान कभी भी अपने विषय का विरोध नहीं करती। ज्ञान का यह स्वरूप है, यह स्वभाव है, ज्ञान कभी भी अपने विषय का विरोध नहीं करता। समझे कि नहीं? अब अज्ञान ज्ञात हो गया मतलब ज्ञान का विषय कौन हो गया? अज्ञान। अब घट ज्ञात हो गया तो ज्ञान का विषय कौन हो गया? घट। तो कहीं देखा है ज्ञान ने घट का विरोध किया? घट यदि ज्ञात हो गया तो उस ज्ञान का विषय घट हुआ, तो घट ज्ञान से घट का विरोध होता है? बोलो। हैं? यथार्थ ज्ञान तो घट का विरोध नहीं हुआ ना। यदि ज्ञान अपने विषय का विरोध करता है ये मानोगे तब तो फिर तुम्हें कोई भी विषय का बोध हो ही नहीं पाएगा। जैसे तुम्हें एक किताब है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? है? ये किताब है, ये ज्ञान हुआ कि नहीं? तो किताब का ज्ञान का विषय क्या हुआ? किताब। तो ज्ञान होने से किताब का विरोध नष्ट हो गया किताब? तो ज्ञान अपने विषय का कभी भी नाश नहीं करता है। यदि ऐसा मानोगे, ज्ञान अपने विषय को नष्ट करता है यदि तुम ऐसा मानोगे, तो ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म नष्ट होना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? है? ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म को जान लोगे। यदि तुमने ब्रह्म को जान लिया तो उस ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या हुआ? ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म नष्ट हो जाएगा? ज्ञान कभी भी अपने विषय को नष्ट नहीं करता, यानी अपने विषय के साथ ज्ञान का विरोध नहीं होता। जैसे घट ज्ञान का विषय घट, घट ज्ञान घट का विरोध नहीं करता, पट ज्ञान का विषय पट, पट ज्ञान पट का विरोध नहीं करता, मठ ज्ञान का विषय मठ, मठ ज्ञान मठ का विरोध नहीं करता, नहीं यदि विरोध माने मठ ज्ञान मठ का विरोध माने तो ये टावर देखते ही सब गिरना लग जाएगा। ये टावर ये घर है जानते ही घर नष्ट होने लग जाएगा, तो कोई व्यवहार ही संभव न होता। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म, तो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का विरोध नहीं करता। इसी तरह अज्ञान का ज्ञान है? किसका ज्ञान? अज्ञान का ज्ञान, अविद्या का ज्ञान का मतलब क्या हुआ? उस ज्ञान का विषय क्या हुआ? अविद्या यदि तुमने जान ली, अज्ञान को यदि तुमने जान लिया, तो उस ज्ञान का विषय क्या बना? अज्ञान। तो अज्ञान अपना विषय हो गया, ज्ञान का विषय अज्ञान, अज्ञान तो उस ज्ञान का विषय हो गया। तो ज्ञान का विशेषता यह है कि अपने विषय को वो कभी भी विरोध नहीं करता, इसीलिए ज्ञान और अज्ञान दोनों एक ही जगह रह रहे हैं। वो समझ में आ गया? क्या विलक्षण थ्योरी है, ले बोलो, क्या विलक्षण प्रक्रिया है। और एक तरफ ये कहा जाता है कि उस अज्ञान को नाश करने के लिए क्षमता किसमें है? ज्ञान में है। विद्यैव तन्नाश विदौ पठीयसी, अज्ञान को नाश करने की क्षमता किसमें है? ज्ञान में है। और अज्ञान को नाश करने की क्षमता ज्ञान में है, तो अज्ञान को प्रकाशित करने की क्षमता किसमें है? उसी ज्ञान में है। अब यदि अज्ञान ने अज्ञान को नाश कर दिया तो फिर प्रकाशित कैसे करेगा? ये चीज नहीं, ये चीज नहीं होती है। ये फॉर्मूले में आपको ये समझना होगा, ज्ञान अपने विषय को नष्ट नहीं करता, परंतु जो अपना विषय नहीं है अपने विषय को आवरण करके बैठा हुआ है, तो ज्ञान अपने स्व विषय का आवरण को नष्ट करता है। ये अविद्या अज्ञान यदि ज्ञान का विषय बन जाएगा तो आवरण नहीं बना। समझ गए ना? अपने विषय को, ज्ञान को ढकाने का मतलब नहीं, ज्ञान का जो विषय है वो जो है उसका जो आवरण है उस आवरण के साथ ज्ञान का विरोध है, विषय के साथ विरोध नहीं है। अब घट ज्ञान का विषय क्या है? घट। और घट आवरण क्या है? घट आवरण अविद्या, घट अज्ञान। देखो घट और घटाज्ञान दो चीजें हो कि नहीं, जो यहां क्लियर होता है, घट और घटाज्ञान ये दो चीज हो गए। जब तुम्हें घट को जाननी है तो ज्ञान का विषय क्या हुआ? घट। और घटाज्ञान घट का आवरण हुआ था, है ना? तब ज्ञान का विषय घट, ज्ञान का विषय घट होने पर अपना विषय को तो उसने विरोध नहीं किया, प्रकाशित किया, लेकिन उसका जो विषय नहीं है घटा अज्ञान, जो घट का आवरण था, उसका विरोध कर दिया। समझिए, अभी अभी क्या हो रहा है? घट ज्ञान माने अविद्या का ज्ञान हमको है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ज्ञान का विषय क्या हुआ? अविद्या। अविद्या खुद ज्ञान का विषय होने के कारण अपने विषय को तो नष्ट नहीं कर पाएगा, तब वो ज्ञान अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकता। देख लो, घटक ज्ञान घट को विषय नहीं करने के कारण घट को नष्ट नहीं करता, लेकिन घटावरण को नष्ट करता है, क्योंकि घटावरण ज्ञान का विषय नहीं है। घड़े के अज्ञान को जानना है कि घड़े को जानना है आपने? यहां स्पष्ट करो ना, हाँ? घड़े के अज्ञान को जानना है कि घड़े को जानना है? यदि घड़े के जो अज्ञान है उसको जानना है तो उसका तो विरोध करेगा नहीं, घड़े के अज्ञान को तो वो प्रकाशित करेगा। कौन? ज्ञान। कौन से ज्ञान? घट का अज्ञान को प्रकाशित करेगा। तब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम घट को जानते हो कि नहीं, तो क्या कहोगे? तुम नहीं जानते हो। नहीं जानते हो का मतलब घट का आवरण को जानते हो। तुम घट का आवरण क्या है? नहीं जानना, वही ना है। अब तुम घड़े को जानना चाहते हो? बोले हां, घड़े को जानना चाहता हूं। तो अब क्या हुआ? घड़ को ज्ञान का विषय बनाना पड़ेगा। तो जब तुम घड़ को ज्ञान का विषय बनाओगे तो फिर घट का आवरण जो अज्ञान है वो ज्ञान का विषय नहीं बना। तो फिर उसने अपने जो विषय नहीं है, आवरण है, विषय का आवरण है, उसको विरोध कर दिया, तो घट अज्ञान का उसने हटा दिया। तो घट ज्ञान के बाद घट का अज्ञान तुम जान पाओगे? ये क्यों नहीं जान पाए? पहले घट ज्ञान नहीं था तो घट का अज्ञान जानते थे कि नहीं? गिरीश भाई, पहले घट नहीं जानते थे तब घट के अज्ञान को तुम जानते थे कि नहीं? तब घट का जो अज्ञान है वही ज्ञान का विषय बनकर बैठा था, इसलिए अपना विषय का उसने विरोध नहीं किया था। अब ज्ञान का विषय तुमने क्या बनाया? घट। तो घट विषय हुआ तो घट क्या हुआ? ज्ञान। घट ज्ञान तो हो गया, तो घट का अज्ञान का तुम्हें क्या फिर ज्ञान होगा? नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विरोध कर दिया, नष्ट कर दिया। इसी तरह इस समय क्योंकि तुम्हारी तमाम ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं हो रहा है, समझ रहे आई कि नहीं? इस समय तुम्हारे तमाम ज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म उस तुम्हारे ज्ञान का विषय न होने के कारण ब्रह्म का जो अज्ञान, आत्मा का जो अज्ञान, वो तुम्हारा ज्ञान का विषय बन गया। नहीं तो देखो, वही तो कह रहे हैं ना, ब्रह्म ज्ञान होने से ब्रह्म का विरोध नहीं किया ना ब्रह्म ज्ञान ने, तब फिर किसका विरोध किया? ब्रह्म के अज्ञान का विरोध किया उसने। घट ज्ञान ने घट का विरोध नहीं किया, घट के अज्ञान का विरोध किया। मठ ज्ञान ने मठ का विरोध नहीं किया, मठ के अज्ञान का विरोध किया। आत्मज्ञान ने आत्मा का विरोध नहीं किया, किसका विरोध किया? आत्मा ज्ञान का विरोध किया। जब तुम्हारे ज्ञान का विषय आत्मा होता है तब अज्ञान ज्ञान का विषय नहीं हुआ, तब उस आत्मा ज्ञान का विषय आत्मा हुआ तो आत्मा का जो आवरण था उसको वो नष्ट कर देगा। इसलिए ज्ञान का विषय घटपट मठ आदि बनाते हो तो घटपट मठ आदि जाना जाता है, प्रकाशित होता है। अब खुद इस समय तुम क्या कह रहे हो? मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं जानता, ये शब्द प्रयोग करते हो कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारे ज्ञान का विषय अविद्या, इसका मतलब अविद्या को जानते हो? बोले हां, अविद्या जानता हूं। तो क्या कोई कहेगा ब्रह्म को भी नहीं जानता और अज्ञान को भी नहीं जानता? कहेगा कोई? ब्रह्म को नहीं जानते हो तो ब्रह्म के अज्ञान को तुम जानते हो कि नहीं? ये क्योंकि अज्ञान प्रकाशित हो गया। अब जब तुमको ब्रह्म जानना है तो ज्ञान का विषय कौन होगा? ब्रह्म को नहीं जानना है तो ज्ञान का विषय हो गया अज्ञान। ब्रह्म को जानना है तो ज्ञान का विषय होगा ब्रह्म। तब विरोध कौन? वो ब्रह्म ज्ञान का विषय ज्ञान ने, ब्रह्म ज्ञान ने ब्रह्म के अज्ञान को नष्ट करेगा।